आठ तक का तर्जुमा हुआ था, सात और आठ का तर्जुमा हो गया था, किसको याद है? गालबन नहीं हुआ था, अच्छा मुझे भी याद आया, सात से चौदह तक आप लोगों को अगले क्लास के लिए दिया था। तो अभी तो जो मार्क मसाइल रह गए हैं तो उसको पढ़ते हैं इंशाल्लाह, और उसके बाद फिर सात और आठ का जिनकी बारी है वो तर्जुमा करें, और फिर उसके बाद उसको उसके मार्क मसाइल पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलाम अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफा, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. خلاصة تفسير ان آیات ہم نے پڑھ لیا تھا معارف مسائل میں پیج 86 کے اوپر. حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے سورہ احزاب میں بیشتر مضامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی کے حرام ہونے سے متعلق ہے. شروع صورت میں مشرکین و منافقین کی ایذاؤں کا ذکر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی گئی تھیں کہ ان کی اتباع نہ کرنا اور جو آپ کے اوپر وحی نازل کی گئی ہے اسی کی اتباع کرنا, ٹھیک ہے؟ تو یہ ہدایات دی گئی تھیں. اس کے بعد جاہلیت کی تین رسموں کا ابطال کیا گیا جن میں آخری رسم کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا سے تھا, کیونکہ کفار نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے, ان کا واقعہ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ غلام تھے, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدیے میں دے دیے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بہت لمبا عرصہ رہے تھے, 10 سال یا اس سے بھی زیادہ, بلکہ بہت لمبا عرصہ رہے. تو ان کے والدین کو ان کا جب پتہ لگا تو یہ ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے, اور انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ تو بہت کریم ہیں اور اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ لوگوں کے اوپر فضل فرماتے ہیں تو آپ ہمارے بیٹے کو ہمارے حوالے کر دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کے حوالے یہ فیصلہ کر دیا کہ زید ہی سے پوچھ لو کہ یہ جہاں جانا چاہے وہاں جا سکتا ہے, میری طرف سے اس کو آزادی ہے. زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنا ہی پسند فرمایا تھا کہ میں اب آپ کو چھوڑ کر میں کہیں نہیں جا سکتا, اپنے والدین کے ساتھ نہیں گئے, والد اور چچا آئے تھے تو ان کو چھوڑ دیا. تو اس بہترین انتخاب کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بیٹا قرار دیا تھا, تو ان کو زید بن محمد کہا جاتا تھا. اس وجہ سے تو فرمایا کہ کفار نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متعلقہ بیوی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے وقت اسی اپنی جاہلانہ رسم متبنہ کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی متعلقہ بیوی سے نکاح کر لیا. اس طرح شروع صورت سے یہاں تک ایذاء رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق مضمون تھا. اس آیت مذکورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور اطاعت تمام مخلوق سے زیادہ واجب ہونا بیان کیا گیا ہے. النبی اولا بالمؤمنین, تو اولا اولیو سے مشتق ہے اور اسم تفضیل کا صیغہ ہے اکبرو کے وزن پر اولیو, تو اس کے حروف اصلی ولیہ ہیں, ولا و یعنی ولیہ یلا, جس کا مطلب ہوتا ہے قریب ہونا. جب ہی ولی دوست کو ولی کہتے ہیں, اور دوست جو ہوتا ہے وہ انسان سے قریب ہوتا ہے, قلبی طور پر بھی قریب ہوتا ہے, جسمانی طور پر بھی قریب ہوتا ہے, یا جو جسمانی طور پر قریب ہوتا ہے وہ قلبی طور پر بھی قریب بن ہی جاتا ہے. تو قرب سے اس کا تعلق ہوتا ہے دوستی کا. تو اولا مطلب زیادہ قریب, تو اولا بالمؤمنین کا جو مطلب خلاصہ تفسیر میں بیان کیا گیا ہے وہ ابن عطیہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا قول ہے. जिसको कुर्तुबी और अक्सर मुफस्सिरीन ने इख्तियार किया है, तो वो कौल दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पर उसका हासिल उन्होंने लिख दिया है कि उसका हासिल ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म हर मुसलमान के लिए अपने माँ बाप से भी ज्यादा वाजिब तामील है। अगर माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी हुक्म के खिलाफ कहें, उनका कहना मानना जायज नहीं है। इसी तरह खुद अपने नफ्स की तमाम ख्वाहिशात पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील मुकद्दम है। ये अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म ये कहाँ से निकले? ठीक है, इसलिए कि अल्लाह के हुक्म की बात तो पहले आ चुकी है ना, कि वो अगर आपको यानी माँ बाप जो है वो शिर्क करने के लिए कहें तो आप उसकी बात ना माने। ठीक है, और ये चीज हम सूरह रूम की या सूरह लुकमान की शुरू की आयत के अंदर पढ़ चुके हैं। अब इससे बज़ाहिर इंसान को ऐसा लगता है कि जी इसका मतलब है कि कुरान की अतात के खिलाफ कहें या अल्लाह के जो जो हुक्म हैं, तो वो अल्लाह के हुक्म तो फिर जी कुरान के अंदर ही होते हैं। ठीक है, आमतौर पर लोग यही समझते हैं। नबी अलैहिस्सलाम के अहकाम कहाँ से निकले कि उनके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के खिलाफ भी बात नहीं मान सकते, तो वो अवला बिल मोमिनीन से निकले। ठीक है, कि ज्यादा करीब है मोमिनीन से, और ज्यादा करीब होने का मतलब यही है कि ज्यादा शफीक हैं, ज्यादा मेहरबान हैं, ज्यादा एहसानात हैं। तो ये तो फिर अहकाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहाँ पर आते हैं? ये अहकाम तो फिर हदीस मुबारक के अंदर आते हैं ना, और हदीस मुबारक जो है वो कुरान मजीद के मुकाबले में बहुत ज्यादा वसी है, बहुत इसके अंदर यानी तफसील भी है और इसको समझना बहुत मुश्किल काम भी है हदीस मुबारक। इसलिए कि हदीस मुबारक के अंदर बज़ाहिर बहुत सारे आपको यानी ऐसे ऐसे मुकामात मिलते हैं कि जिनके अंदर आपको यानी तत्वीक करनी पड़ती है या तरजीह देनी पड़ती है। तरजीह या तत्वीक के जरिए से आपको बात को समझना पड़ता है कि भाई ये असल में मसला है क्या। इसी वजह से तो फिका इजाद हुई। फिका इजाद होने की जरूरत ही क्या थी? अगर हदीस मुबारक और कुरान में हर बात बिल्कुल क्लियर होती तो फिका की जरूरत ही नहीं थी। तो फिका इसीलिए इजाद हुई कि इसकी जरूरत पड़ती है। तो फिर फिका की जब जरूरत पड़ती है तो वहीं से तो फकीह की जरूरत पड़ी, वहीं से तो आलिम की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो सिंपल लॉजिक से बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि नबी की बात के खिलाफ ना मानने का मतलब ही ये है कि फकीह की बात के खिलाफ ना किया जाए। इसलिए कि नबी की बात है क्या, ये आम मुसलमान के लिए समझना मुश्किल है। ठीक है, वो समझ नहीं सकता कि उसके सिचुएशन के अंदर या इन जनरल जो शरी मसाइल हैं तो इनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल हुक्म है क्या या सुन्नत क्या है। ठीक है, किस सिचुएशन के अंदर किस चीज को तरजीह दी जाएगी, और अगर दो चीजों में बाहमी मुताबिकत नजर नहीं आती तो उनमें तत्बीक कोरिलेशन कैसे की जाएगी, ये सारा काम ही फकीह ने बताना होता है। ठीक है, तो चाहे हम कुरान की वो आयत बतौर दलील के इस्तेमाल करें कि अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलुल अम्र मिनकुम। ठीक है, उसको बतौर दलील के इस्तेमाल करें कि जी उलमा की बात माननी जरूरी है, या ये कि हम इस अकली दलील को इस्तेमाल करें कि भाई उलमा ही तो समझा सकते हैं ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं। तो उलमा की बात क्या यानी इस नतीजा क्या निकला, नतीजा जो अभी हम पढ़ रहे हैं उस के ऊपर क्या निकला कि माँ बाप की बात से भी ज्यादा अहम जो है वो उलमा की बात मानना है, माँ बाप की बात से भी ज्यादा अहम जो है वो उलमा की बात मानना है। ठीक है, तो जब कभी कॉन्ट्रोडिक्शन होती है कि माँ बाप कुछ करने को कह रहे हैं और उलमा इनकार कर रहे हैं कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, तो ऐसे मामले में माँ बाप की नहीं मानी जाएगी बल्कि उलमा की मानी जाएगी। ठीक है, अब ये और बात है कि अल्लाह ताला भी, अल्लाह के रसूल भी और उलमाए हक भी, ये तीनों जो हैं वो माँ बाप की खिदमत अताअत और उनके साथ शफ़क़त और मेहरबानी का मामला करना, ये तीनों जो हैं वो इसके ऊपर बहुत ज्यादा एम्फसाइज करते हैं। ठीक है ना, तो ये तो इनका ज़र्फ़ है ना। ठीक है, पिछले दिनों मर्दों में जुमे की मजलिस के बाद जो थोड़ी देर बैठते हैं तो उसमें बात हो रही थी कि भाई कुर्बान जाए अल्लाह ताला के हिल्म के ऊपर, कुर्बान जाए अल्लाह ताला के दरगुजर के ऊपर, हिल्म के ऊपर और जर्फ के ऊपर, कि वही माँ बाप जो के औलाद को अल्लाह के खिलाफ जिंदगी गुजरवाते हैं, अल्लाह के खिलाफ करते हैं, और वही अल्लाह जो है वो इन्हीं माँ बाप के सामने औलाद को कंधे झुका के रखने के लिए कहता है, वही अल्लाह इन्हीं माँ बाप के सामने औलाद को कहता है कि तुम इनको उफ ना कहना। ठीक है ना, हालांकि इन्हीं माँ बाप ने अल्लाह के खिलाफ भड़काया था औलाद को। काफिर माँ बाप होते हैं ना, राइट, तो वो क्या अल्लाह ताला के हक में औलाद को परवरिश देते हैं? या फासिक माँ बाप होते हैं, फाजर माँ बाप होते हैं, दुनिया की मोहब्बत में डूबे हुए माँ बाप होते हैं, तो वो अल्लाह और रसूल के तरीके के ऊपर तो नहीं औलाद को चलाते ना। लेकिन अल्लाह और रसूल का जवाब क्या है इसके ऊपर कि इन माँ बाप को तुम उफ तक ना कहना, इन माँ बाप के सामने कंधे झुका के रखना, बल्कि इनके लिए तुम दुआ भी करते रहना, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। और ये रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ये जिंदा माँ बाप के लिए ये दुआ की जा सकती है, जो माँ बाप अभी तक जिंदा हैं उनके लिए ये दुआ की जा सकती है, अगर वो कुफ्र पे ना मरे हो, यानी मर ना गए हो कुफ्र की हालत के ऊपर, ठीक है। तो अगर वो काफिर हैं लेकिन जिंदा हैं तो उनके लिए ये दुआ की जा सकती है, क्योंकि इसका मतलब क्या होगा कि उनकी दुनियावी जिंदगी में अल्लाह ताला आसानियां पैदा फरमा दे और उनको हिदायत अता फरमा दे, ठीक है। तो रब्बिर हमहुमा काफिर के लिए भी ये दुआ मांगी जा सकती है जब तक कि वो जिंदा है, लेकिन अगर वो कुफर पर मर गया तो फिर उसके लिए रहम की दुआ नहीं मांगी जा सकती, ठीक है। लेकिन अगर ईमान वाला है, वालदैन ईमान वाले हैं, तो जैसे तैसे भी थे मर गए, तो उनके लिए भी ये दुआ मांगी जा सकती है, क्योंकि ईमान के ऊपर मरे हैं, कम से कम हमारे इनके मुताबिक, ठीक है। तो फरमाया कि अगर माँ बाप आप सरसन के किसी हुक्म के खिलाफ कहें, यानी फुकहा के हुक्म के खिलाफ कहें, उलमा के हुक्म के खिलाफ कहें, ठीक है, तो उनका कहना मानना जायज नहीं होगा। इसी तरह खुद अपने नफ्स की तमाम ख्वाहिशात पर भी आपके हुक्म की तामील मुकद्दम है, ठीक है। तो मामला यही है कि जी सिर्फ ये नहीं कि जी माँ बाप को बुरा बनाओ और माँ बाप के खिलाफ हो जाए, दीनदार जैसी हो तो वैसी जो है माँ बाप के खिलाफ हो जाए, माँ बाप की बात ना मानना छोड़ दें, ठीक है, खाली ये कोई थोड़ी है, बल्कि अपने नफ्स की भी तो बात माननी छोड़नी है ना। तो इस वजह से इंसान को जो है वो यानी इन सारी चीजों को फिर कंसिडर करना चाहिए। हाँ, अलबत्ता गलती कोताही इंसान से हो जाती है, हर इंसान से गलती होती है, हर इंसान के अंदर कमजोरियां हैं और बहुत सारी नुक्स हैं, तो इसकी वजह से उससे गलती हो जाती है, लेकिन उसूलन उसको इसके खिलाफ नहीं सोचना चाहिए, ठीक है, कि नहीं अल्लाह और अल्लाह के रसूल और जो उलमाए कराम हैं तो इनकी बात तो जब मैं चाहूंगा तभी मानूंगा, वरना मैं नहीं मानूंगा, ये सोच नहीं होनी चाहिए। हाँ, मानने में कोताही जरूर हो सकती है, मानने में जो है वो लैक्स हो सकता है, आप जो है वो कभी यानी गलती हो जाए, गलती हो जाना का मसला कोई नहीं है, मसला जो है वो यानी इस फिक्र का होना है कि बस मैंने जो है वो इनको ही फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, प्रायोरिटी देनी है। सही बुखारी वगैरह में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन मुमिनिन इल्ला व अना मा मिन मुमिनिन इल्ला व अना औलन नासी बिही दुनिया व आखिरा, यानी कोई मोमिन ऐसा नहीं है जिसके लिए मैं दुनिया और आखिरत में सारे इंसानों से ज्यादा औला और अकरब ना हो जाऊं, यानी उसके निगाह में मैं सारी दुनिया के इंसानों सारी दुनिया और आखिरत के इंसानों से ज्यादा अकरब ना हो जाऊं, यानी उसके सोच के अंदर, उसके दिल के अंदर, या उसके ख्याल के अंदर, उसके तसव्वुर के अंदर, ठीक है, यानी अकीदे के एतबार से, ईमान के एतबार से मैं सबसे ज्यादा औला ना हो जाऊं। इकराउ इन शिअतुम, अगर तुम चाहो तो इस आयत को पढ़ लो, अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसहिम, ठीक है, तो अगर तुम्हें इसकी तस्दीक चाहिए हो, तुम्हें मेरी बात के ऊपर समझ में नहीं आ रही हो बात कि ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स जो है वो हमारे दरमियान रहने वाले और हमारे जैसे रहने वाले जिनके साथ हमारी दोस्ती का भी ताल्लुक था और जिनको हमने जो है वो बचपन से देखा है, भाई हो जाता है ना इस तरह की बात कि आपके दरमियान पला बड़ा बड़ा हुआ कोई आदमी होता है, वो ठीक है, आप उसकी अच्छी आदतों की वजह से, इखलाक की वजह से आप उससे मोहब्बत करने लगते हैं, ठीक है, आप उसकी थोड़ी बातें भी मानना शुरू हो जाते हैं, उसको रेस्पेक्ट भी देना शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये बात कि जी सारी दुनिया और आखिरत के इंसानों से ज्यादा उसको इंपॉर्टेंस देना शुरू हो जाए, भाई हमारे लिए तो ये बात थियोरेटिकली बड़ी आसान है ना ये कह देना, ठीक है, क्योंकि हमने नबी अलैहिस्सलाम को तो पलते बढ़ते हुए नहीं देखा है ना, हम नबी अलैहिस्सलाम के साथ तो वैसे नहीं रहे ना जैसे कि कोई अपनी अपने शौहर के साथ रहता है, ठीक है, बीवी भी जो है अपने शौहर के साथ रहती है, बच्चे अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, ठीक है, पड़ोसी पड़ोसी के साथ रहते हैं, हम तो नबी अलैहिस्सलाम के साथ ऐसे नहीं रहे ना, हमने तो किताबी तरीके से नबी अलैहिस्सलाम को जाना है ना, लेकिन जो लोग आप सत्संग के साथ रहे हैं, जरा तस्वर करके सोचें कि आपके दरमियान का एक नेक बाइखलाक आदमी आपसे ये डिमांड करना शुरू हो जाए कि मैं सारी दुनिया और आखिरत के मुकाबले में तुम्हारी नजर में ज्यादा अहम होना होना चाहिए मुझे, वरना तुम ईमान वाले हो गए नहीं। ठीक है, तो अब जरा सा आप शेक हो जाते हैं ना, आप जरा हिल जाते हैं कि यार ये तो बहुत बड़ा दावा कर दिया इसने, ये तो एक बहुत बड़ी शर्त लगा दी इसने। ठीक है, तो इसी वजह से नबी अलैहिस्सलाम ने इस किस्म के वसवसे को या इस किस्म का कोई भी अगर ख्याल किसी के जहन में आए उसको रफा करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरानी दलील भी दे दी कि अल्लाह ताला खुद इरशाद भी फरमाते हैं, जिसका हासिल ये है कि मैं हर मोमिन मुसलमान पर सारी दुनिया से ज्यादा शफीक और मेहरबान हूँ। और ये जाहिर है कि इसका लाजमी असर ये होना चाहिए कि हर मोमिन को हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की मोहब्बत सबसे ज्यादा हो, जैसे कि हदीस में ये भी इरशाद है कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नास अजमईन। ठीक है, आपको तो पता ही है इस हदीस के बारे में, वो अजवाजहु उम्महातुहुम। अच्छा, ये जो नबी अलैहि सलाम की मोहब्बत है ना, तो इसको भी अमूमी तौर पर लोग यही समझते हैं कि ये मोहब्बत भी जो है इसका मतलब ये है कि दिल के अंदर कुछ शगुफे फूटने चाहिए। ठीक है, दिल में शगुफे फूटने चाहिए और जो है वो जैसे कि एक एक कैफियत होती है ना दिल के अंदर जिससे कि शदीद मोहब्बत हो जाए। ठीक है, हमारे आपस के लोगों में, ठीक है, चाहे वो बीवी को शौहर से हो जाए, चाहे वो जो है वो माँ को बेटे से हो जाए, चाहे किसी के साथ भी मोहब्बत हो जाए, तो अब एक अजीब किस्म की ना कुछ लहरें सी उठती हैं अंदर। ठीक है ना, कुछ कैफियात होती हैं, कुछ अजीब इस किस्म के, तो लोग ये समझते हैं कि नबी से मोहब्बत का भी यही मतलब है। और अगर ये कैफियात नहीं पैदा हो रही, अगर ये शगुफे नहीं फूट रहे, अगर ये जो है हालतें हमारे अंदर पैदा नहीं हो रही, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर तो मोहब्बत नहीं है। ठीक है, और ये मोहब्बत जो है वो हमें हासिल नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए फिर वो परेशान हो जाते हैं या ये कि फिर वो मायूसी का शिकार हो जाते हैं। तो इस वजह से अच्छी तरीके से इस बात को जान लें और दूसरों को बताने के लिए भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएं कि नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का मतलब जो है वो ताजीम और अतात है। ठीक है, ताजीम और अतात। ठीक है, और ये ताजीम और अतात जो है ना ये असल मोहब्बत है, और वो जो कैफियात हैं अंदर की जो चीजें हैं ना वो कोई कोई गारंटी नहीं है कि वो मिल जाएगी हर एक को, वो हर एक को नहीं मिल सकती, वो कभी किसी को मिल भी जाती है। ठीक है, जैसे शायर किस्म के लोग होते हैं ना, उनकी टेरेन बात हुई थी ना पिछले दिनों बयान के अंदर कि हर बंदे का टेरेन अल्लाह ताला ने डिफरेंट बनाया, हर बंदे की जो पिच है या हर बंदे की जो जो जमीन है ना, यानी कैफियात की जो एक 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 एक, एक, एक अल्लाह ताला ने बनाई है, कुछ नरम होते हैं, कुछ सख्त होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ कैसे होते हैं, भाई तो हर एक की डिफरेंट होती है। तो किसी का मिजाज ऐसा बनाया होता है कि उसके ऊपर जो है वो हल्की सी भी बात का असर हो जाता है, आंसू बहना शुरू हो जाते हैं, और उसके जो है वो जो शायर किस्म के लोग होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी शायर किस्म के जो लोग होते हैं इनकी तबीयत ही जो है ना लतीफ सी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सारे के सारे कामिल मोमिन होते हैं, शायर क्योंकि लतीफ तबीयत है तो कामिल मोमिन हो जाएगा, नहीं, कितने यानी काफिर फासिक फाजिर मुल्हिद और एथियस्ट किस्म के लोग होते हैं जो कि शायर बन जाते हैं, तो उनकी भी तबीयत लतीफ होती है। ठीक है, मोमिन बनने के लिए तो अकल का फैसला करना पड़ता है ना, वो अकल का फैसला नहीं करते लेकिन तबीयत उनकी लतीफ होती है, तो उनके ऊपर ना अजीब दुनिया के हालात होते हैं। अब ट्रैफिक जैम के अंदर लोग फंसे हुए, हर एक की तो तबीयत खराब नहीं होती ना ट्रैफिक जैम के अंदर, राइट, कुछ लोग होते हैं उनको मतली आनी शुरू हो जाती है, कुछ लोगों का जो है वो सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनकी फिजिकल तबीयत भी लतीफ होती है। उसी तरीके से शायर जो होते हैं ना उनकी तबीयत लतीफ ऐसे होती है कि वो दुनिया के अंदर जो झमेले देखते हैं, हालात देखते हैं, तो उनके अंदर से एक लतीफाना कलाम निकलता है जिसको शेर कहते हैं। ठीक है ना, ये नसर जो होते हैं ना, नसर के अंदर लताफत नहीं होती है, शेर के अंदर लताफत होती है, और वो लताफत उनके अंदर की लताफत की अकासी कर रही होती है असल में। ठीक है, तो ये जो कैफियात है ये उसी शख्स को ज्यादा मिलती है कि जिसकी तबीयत भी लतीफ हो, वरना सहाबा कराम में ऐसे भी थे जो कि सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले थे लेकिन नबी अलैहि सलाम यानी उनको आंसू आंसू नहीं आते थे। ठीक है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल मशहूर है कि ये रोना वोना हमें शुरू में आता था, अब तो हमें कोई रोना वोना नहीं आता। ठीक है, ये शुरू में भी आता था या नहीं आता था वो उनके एग्जैक्ट कलाम मैंने नहीं पढ़ा, मैंने तर्जुमा ही पढ़ा है या सुना है, तर्जुमा ही, कि हमें रोना वोना नहीं आता। ठीक है, तो भाई अबू बकर सिद्दीक रहता नहीं कि तबीयत ऐसी थी, लेकिन इसमें उनकी इससे उनकी मोहब्बत के अंदर तो जरा बराबर भी फर्क नहीं आता ना, और वो सबसे ज्यादा मोहब्बे रसूल ही कहलाएंगे अबू बकर सिद्दीक रहता ना। उसी तरह हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला, वो दूसरे नंबर के ऊपर सबसे ज्यादा मोहब्बत में उनका उनका जिक्र आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। लेकिन हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला की भी कोई ऐसी लतीफ तबीयत का जिक्र हम नहीं कर पढ़ते, रोए चले आ रहे हैं रोए चले आ रहे हैं, जबकि कुछ लोग जो है उनका जिक्र पढ़ते हैं कि जी हर वक्त रोते रहते थे हर वक्त रोते रहते थे। राइट, तो ये रोने शोने का ताल्लुक नहीं होता इससे, इसका ताल्लुक होता है अताअत के साथ और ताजीम के साथ। ताजीम का मतलब ही अताअत होता है, अगर अताअत कर रहे हैं तो इसका मतलब है ताजीम है, और अगर अताअत नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कोई ताजीम शाजीम नहीं है। ठीक है, ताजीम है हाँ, तो यही तो बोल रहा हूँ कि अताअत, ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत, आप जो कह रहे हैं उसको उसके ऊपर अमल करना, ठीक है, तो ये है अताअत। अब इसके बाद जो है वो कुछ लोगों के दिल में जो है वो और ज्यादा कैफियत पैदा होती है, वो जो कैफियत होती है ना अताअत वाली, यानी अताअत के नतीजे में जो मोहब्बत पैदा होती है, वो मोहब्बत जो होती है ना वो होती है टेंजिबल मोहब्बत, ठीक है, वो होती है बहुत ही यानी स्ट्रॉन्ग मोहब्बत। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग मोहब्बत का मतलब ये होता है कि अब ये शख्स जो है ना वो नाफरमानी कर नहीं सकता, ठीक है, नाफरमानी नहीं कर सकता। ये नहीं कि बबूले उठ रहे हैं उसके, भबोके उठ रहे हैं उसके पेट के अंदर, मरोड़ उठ रहे हैं उसके पेट के अंदर, ठीक है, ये नहीं मतलब होता, बल्कि मतलब ये होता है कि अगर नाफरमानी का इसको मौका मिलता है ना, और इसका हाथ अगर नाफरमानी की तरफ बढ़ने लगता है, इसकी आंखें जो है वो नाफरमानी की तरफ बढ़ने लगती हैं अपने महबूब की नाफरमानी, तो उसके उसके वजूद के ऊपर ऐसी कैफियात तारी होती हैं कि ये बढ़ नहीं सकता। जैसे कहते हैं ना बाल खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिमाग जो है वो आंखों के सामने जो है वो अंधेरा छा जाता है, ठीक है ना, इस किस्म की कैफियात आ जाती है अगर वो नाफरमानी करना चाहता है, ठीक है ना, तो ये जो है ना ये मोहब्बत की कैफियात होती है, ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की ये कैफियात होती है, ठीक है, और ये कैफियात जो होती हैं हर बड़े की मोहब्बत के मामले में ऐसा ही होता है, हर बड़े की मोहब्बत के मामले में ऐसा ही होता है। तो हम बड़े की मोहब्बत को अपने बराबर वाले की मोहब्बत के ऊपर कयास नहीं कर सकते, ठीक है ना, अपने जैसों की मोहब्बत अलग चीज होती है, और अपने से बहुत बड़ा चाहे वो शेख हो, चाहे वो शेखुल मशाइख हो नबी अलैहिस्सलाम, चाहे वो परवरदिगार हो, ठीक है ना, ये तो बहुत बड़े लोग हो गए ना सारे के सारे, ठीक है, तो इनकी मोहब्बत एक अलग चीज होती है, और अपने जैसों की जिसमें के अंदर मियाँ बीवी हो गए, भाई बहन हो गए, बीवी और यानी औलाद भी हो गई, औलाद भी जो है वो तकरीबन बराबर जैसी एक चीज होती है, एक ही जनरेशन का फर्क होता है ना खाली, ठीक है, तो वो अलग मोहब्बत होती है और ये अलग मोहब्बत होती है, दोनों को एक यानी इसको एक को दूसरे पर कयास नहीं किया जा सकता, ठीक है। आगे फरमाया व अजवाजुहु उम्महातुहुम, अजवाज मुतहरात को उम्मत की माएं फरमाने से मुराद ताजीम व तकरीम के एतबार से माएं होना है। अब देखें फर्क फर्क यहां पर भी है, इवन अजवाज के साथ भी जो ताल्लुक है ना हमारा अजवाज मुतहरात के साथ, तो वो भी जो है वो डिफरेंट ताल्लुक है, ठीक है, ये वैसी माएं नहीं है हमारी जैसे कि हमारी माँ होती है, ठीक है, जिससे जिसने हमें जना होता है वो माँ अलग माँ है, और ये माँ अलग माँ है, इन दोनों में भी फर्क है, और आगे फर्क खोलते हैं कि ये ताजीम और तकरीम के एतबार से माए होना है। माँ और औलाद के दूसरे अहकाम हुर्मत निकाह, यानी माँ से निकाह नहीं हो सकता, और महरम होने की वजह से बाहम पर्दा ना होना, ठीक है ना, जिस माँ ने आपको जना हो, बायोलॉजिकल मदर जिसको कहते हैं, उसके साथ पर्दा नहीं होता, लेकिन अजवाज मुतहरात के साथ ऐसा मामला नहीं है, और मीरास में हिस्सेदार होना वगैरह ये अहकाम इससे मुतालिक नहीं है, मुतालिक नहीं है, जैसा कि आखिर आयत में इसको खोल दिया गया, और अजवाज मुतहरात रज़ियल्लाहु से किसी उम्मती का निकाह हराम होना वो एक मुस्तकिल आयत में अलहदा फरमाया गया है, इसलिए ये जरूरी नहीं कि ये हुरमत निकाह भी माए होने की वजह से हो, ठीक है, तो ये यानी माए होने की वजह से ये हुरमत निकाह ना भी हो तो भी यानी ये बात क्लियर है कि ये माए डिफरेंट माए हैं और हमारी बायोलॉजिकल मदर डिफरेंट बायोलॉजिकल मदर है, फर्क है ना, बिकॉज फर्क क्यों है, फर्क इसीलिए है क्योंकि अपनी माँ जो होती है वो फिर भी तकरीबन अपने ही जैसी होती है, ठीक ठीक है। कुछ लोग तो हमारे कल्चर में ऐसे भी हैं जो कि अपनी माँ को आपा कहते हैं, ठीक है, ये शायद दिल्ली वाले लोग होते हैं जिनके घरों के अंदर ना माँ को माँ कहा ही नहीं जाता, उनको आपा कहते हैं अपनी माँ को, अजीब पता नहीं क्यों, लेकिन खैर तो है ये बस तरीके से। तो माँ के साथ तो बड़ी बेतकल्लुफी और बहुत ही डिफरेंट किस्म का मामला होता है ना औलाद का, लेकिन ये माएँ डिफरेंट माएँ, ये बहुत बड़ी माएँ हैं, बहुत बड़े लोग हैं। मसला आयत मस्कुरा से साबित हुआ कि अजवाज मुतहरात रजी अल्लाह ताला अन्हुन्ना में से किसी की शान में कोई अदना बेअदबी इसलिए भी हराम है कि वो उम्मत की माएं हैं, और इसलिए भी कि उनकी ईजा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईजा पहुंचेगी जो अशद दर्जे का हराम है, अपने हरम, ठीक है, ये अजवाज मुतहरात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम में, यानी आप के जो प्राइवेट स्पेस है, हरम का मतलब क्या होता है, प्राइवेट स्पेस, ठीक है, ये हरम के लोग हैं, ये प्राइवेट घर के लोग हैं, तो अगर इनके बारे में बुरा बुरी बात करेंगे तो जो उस घर का मालिक होता है तो उसको बुरा लगता है, अपने घर के ऊपर तनकीद जो है ना ये बुरी लगती है, खुसूसन जब वो किसी छोटे की तरफ से आ रही हो। भाई बड़ा तो तनकीद कर सकता है, वो तो इसलाह की खातिर तनकीद करता है, ठीक है, लेकिन छोटा या बराबर वाला अगर तनकीद करना शुरू हो जाए तो ये चीज तो अच्छी नहीं लगती ना, खुसूसन किसी इतने बड़े की जैसे नबी अलैहिस्सलाम। तो फरमाया कि वो उलुल अरहाम बाउदुहुम औला बिबाउदिन, उलुल अरहाम के लफ्जी मानी सब रिश्तेदारों और कुल कराबतदारों को शामिल हैं, ख्वाह वो लोग हों जिनको फुकहा असबात के नाम से ताबीर करते हैं या वो जिनको खास इस्तेलाह के एतबार से असबात के बिलमुकाबिल उलुल अरहाम कहते हैं, ठीक है, यानी इसमें असबात भी शामिल हो जाते हैं जिनको के विरासत में यानी कुछ थोड़े दूर के रिश्तेदार होते हैं, या आपने अभी सराजी तो शायद नहीं पढ़ी है ना, सराजी जब इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो उसमें असबात अलग होते हैं और उनके रिश्ते अलग होते हैं, यानी बेटा बाप ये सब अलग होते हैं। तो ये किसकी तारीफ एग्जैक्टली मुझे मेरे जहन में नहीं है, इरादा था कि किताब से देख के आपको बताएंगे लेकिन नहीं हो सका। तो असबात के नाम से तावी करते हैं या वो जिनको खास इस तरह के अतबार से असबात के बिलमुकाबिल उलुर अरहाम कहते हैं, यानी रहम वाले, जिनके साथ क्या कहते हैं इंग्लिश में, वूम्ब रिलेशनशिप, रिलेशंस ऑफ द वूम्ब। कुरान करीम में ये फिकही इस्तेलाह जो बाद में इख्तियार की गई है मुराद नहीं है, मतलब ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी अजवाज का ताल्लुक मोमिनीन उम्मत से अगरचे इस दर्जे में है, इस दर्जे है कि माँ बाप से भी मुकद्दम है, मगर मीरास के अहकाम में इसका कोई दखल नहीं है, बल्कि मीरास नस्बी और कराबती रिश्तों की बुनियाद पर ही तकसीम की जाएगी, ठीक है, नसब का रिश्ता भी आपको पता है, कराबती रिश्ते नसब के अलावा जो रिश्ते होते हैं तो जिनको के मीरास तकसीम होती है, भाई बहन को भी होती है, दादा दादी को भी होती है, नाना नानी को भी होती है। मीरास के हिस्सेदारी शुरू इस्लाम में ईमानी और रूहानी रिश्ते की बुनियाद पर थी, बाद में उसको मनसूख करके कराबती रिश्तों की बुनियाद पर कर दी गई, जिसकी तफसील कुरान करीम ने खुद बता दी है। ये पूरी तफसील नासिख और मनसूख आयतों की सूरह अनफाल में गुजर चुकी है, और मिनल मुमिनीना के बाद वल मुहाजरीना का जिक्र इस सूरत में इनका इख्तिसास व इम्तियाज बतलाने के लिए है, ठीक है, यानी ऐसा नहीं है कि मोमिनीन अलग चीज है और मुहाजरीन जो है वो मोमिनीन नहीं है, ठीक है, बल्कि सिर्फ इख्तिसास करने के लिए, इनको खास करने के लिए अलग से भी मुहाजरीन का तذکرہ कर दिया। बाज़ हज़रात ने फरमाया कि यहाँ मोमिनीन से मुराद अंसार और मुहाजरीन से मुराद कुरैश है, मुहाजरीन के तकाबुल से मोमिनीन का लफ्ज अंसार के लिए होना मालूम हो गया, इसलिए कि मुसलमानों में दो ही तबके थे, एक मुहाजरीन का तबका था एक अंसार का तबका था, तो अल्लाह ताला ने मुहाजरीन को अलग से बयान कर दिया, तो बाकी कौन बच गया, अंसार बच गए। इस सूरत में आयत तवारिस बिन हिजरा के लिए नासिख होगी, ठीक है, यानी इस तरीके से जो अल्लाह ताला ने मोमिनीन और मुहाजरीन यानी अंसार और मुहाजरीन का खास नाम लेकर के बयान फरमाया ना, अगर ये वाली तफसीर ली जाए तो, ठीक है, अगर यही तफसीर मुराद दी जाए कि मोमिनीन से मुराद अंसार हैं और मुहाजरीन से मुराद मुहाजरीन ही है, तो फिर ये आयत जो है वो तवारस बिल हिजरा यानी हिजरत के बाद जो नबी अलैहि सलाम ने जैसे ही फरमाया कि क्योंकि इब्तदाए हिजरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजरीन और अंसार के दरमियान मवाखात करा कर उनके बाहम विरासत जारी होने का भी हुक्म दिया था कि जिसको भाई बना दिया तो वो उसकी विरासत में भी हिस्सेदार बन गया, ठीक है, क्योंकि एस्टैब्लिश करना था ना इन लोगों को जो कि अपना सब कुछ छोड़ करके आ गए थे, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला की मर्जी से ही अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम ने विरासत के अहकाम भी जारी कर दिए थे। तो इस आयत ने इस तवारुस बिल हिजरा को भी मनसूख कर दिया, क्योंकि ये आयत जो है वो काफी सालों के बाद ये सूरह अहज़ाब नाजिल हुई थी, और बाद में जो पर्दे के अहकाम आते हैं तो वहां पर सरातन भी जिक्र है कि पर्दे की जो आयात है वो 5 ज़िलहज्जा में, ठीक है, 5वीं ज़िलहज्जा के अंदर नाजिल हुए थे। तो शायद बाकी आयात भी सूरह अहज़ाब की 5वीं ज़िलहज्जा में नाजिल हुई हूँ, और मवाखात को कायम हुए हुए इस वक्त 5 साल गुजर चुके थे। अल्लाह ताला ने इन मुहाजरीन को 5 सालों के अंदर इतना एस्टैब्लिश कर दिया था कि अब जो है वो इन चीजों की जरूरत नहीं थी, ठीक है, यानी तवारुस बिल हिजरा के अहकाम की अब जरूरत ही नहीं थी, तो अब उनको मनसूख कर दिया गया। इल्ला अन तफअलू इला औलियाइकुम मारूफा, यानी विरासत तो सिर्फ रिश्तेदारी के ताल्लुक से मिलेगी, गैर रिश्तेदार वारिस नहीं होगा। इल्ला अन तफअलू इला औलियाइकुम मारूफन, के मगर ईमानी अखुवत की बिना पर जिन लोगों से ताल्लुक हो उनको अगर तुम कुछ देना चाहो तो इसका तुम्हें इख्तियार है, तो अपनी जिंदगी में भी बतौर हदिया तोहफा उनको दे सकते हो और मौत के बाद भी उनके लिए वसीयत भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वसीयत के अहकाम यही है कि 1/3 जो होता है तरका, मरने वाले का जो टोटल तरका होता है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक हिस्सा जो होता है उससे उसके कर्ज वगैरह अदा किए जाते हैं, ठीक है, और एक हिस्सा जो होता है वो उसके अंदर वो वसीयत जारी कर सकता है अगर करना चाहे, ठीक है, कि मेरा 1/3 माल जो है तो ये किसी दूसरे शख्स को दे दिया जाए, ठीक है। फिर उसके बाद जो 1/3 बच जाता है तो उस 1/3 के अंदर मीरास के शरिया का मात जारी होते हैं। अच्छा, इसके बाद जो दो आयात हैं इनका अगर जिनका बारी थी तर्जुमा करने के वो कर लें तर्जुमा, तो आगे बढ़ते हैं। जी, बारी किन की थी? नजर तो आ रही है लेकिन हैं जी, आप सुन रही हैं नाबिया साहबा, आप तर्जुमा कर सकती हैं अभी। ठीक है, खींचे, अभी दो ही आयात की कर लीजिए, बाकी के लिए अगले क्लास में कीजिएगा। जल्दी कर लें, टाइम कम है।
अस्सलाम वालेकुम। और जब लिया हमने मिन नबीना नबियों में नबियों से मिसाका हम अहद उनका व मिन का और आपसे व मिन नूहिम नूहिम व इब्राहिमा व मूसा व ईसा मरियमा और नूह से इब्राहिम से मूसा से और ईसा इब्ने मरियम से व अखजना और लिया हमने मिनहुम उनसे मीताकन गलीजन अहद पक्का। गलीजन के गलीजन जो है वो सिफत मुशब्बा का सीगा है, यानी कि पक्का अहद लिया हमने उनसे। लियस अल सादिकीना लियस ताके सवाल करे सादिकीना सादिकीना सच्चों से अन सिद्कहिम उनके सच के बारे में। वा अद्दा और तैयार किया इसने लिल काफिरीना काफिरों के लिए अजाब अलीमा दर्दनाक अजाब।
وأعد للكافرين عذابا أليما، تو اس کے خلاصے تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ وقت قابل ذکر ہے، یعنی اذ کر کے جب اللہ تعالیٰ کوئی بات شروع کرتے ہیں نا، تو اس کا مفسرین عموماً ایسے ہی ترجمہ کرتے ہیں کہ جب سے مراد وہ وقت قابل ذکر ہے. تو جبکہ ہم نے تمام پیغمبروں سے ان کا اقرار لیا کہ احکام الہیہ کا اتباع کریں، جن میں خلق اللہ کو تبلیغ و دعوت اور باہمی تعاون و تناسب بھی شامل ہے. تو خلق اللہ کو تبلیغ و دعوت، یہ نبیوں کی ذمہ داری تھی. اچھا، نبیوں کی ذمہ داری ہے تبلیغ و دعوت، تبلیغ جماعت کی ذمہ داری نہیں ہے. ٹھیک ہے، تبلیغ جماعت کے اندر جو 4 مہینے کے لیے نکلا جاتا ہے، یہ اپنی اصلاح کے لیے نکلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو سینئر تبلیغی ہیں نا، سینئر جو اکابرین اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، یہ اس بات کے اوپر بہت کلیئر ہے، یہ تبلیغ کا کام سیکھنے کے لیے نکلا جاتا ہے. حتیٰ کہ ابھی کسی نے وہ ویڈیو فارورڈ کری جس کے اندر جو پہلے کیا نام تھا، کیا کہتے ہیں ان کو، ویسے تو ہجرا کہا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے کیا، ذرا شائستہ نام کیا ہوتا ہے ان کے لیے جو اس طرح کا کام کی زندگی گزارتے ہیں. تو بہرحال ان کی بہت اچھا بیان تھا، بہت ہی اچھا بیان تھا. ٹھیک ہے، واقعی پر اثر تھا، اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ، خواجہ سرا بھی کہتے ہیں اور بھی ابھی ایک اور لفظ بھی تھا میرے ذہن میں نہیں آ رہا. تو انہوں نے بھی یہی بہت یہی بات کری، 4 مہینے کے لیے نکلو سیکھنے کے لیے، 4 مہینے تو سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں اس کام کو، اور یہ کام تو ہم نے ساری زندگی کرنا ہے. ٹھیک ہے، کیا مطلب کہ 4 مہینے کی جو ترتیب ہے حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کی، یا اکابرین تبلیغ کی بنائی ہوئی جو ترتیب ہے، 4 مہینے اور 40 دن اور پورا سال، یہ سیکھنے کا وقت ہے، یہ اپنی اصلاح کا وقت ہے. ٹھیک ہے، اور پھر جو کرنے کا کام ہے، کرنے کا کام تو ساری زندگی کا کام ہے. ٹھیک ہے، وہ تو ہر وقت لے کے، یہ کوئی تھوڑی کہ 4 مہینے کے لیے نکل گئے اور تبلیغ مکمل ہو گئی، تبلیغ ختم ہو گئی، تبلیغ تو کرتے ہی نہیں ہے 4 مہینے میں. وہ تو ایک، یعنی آپ جس طریقے سے میڈیکل سائنس پڑھتے ہیں نا، تو میڈیکل سائنس کے اندر پھر آپ پیشنٹس بھی دیکھ لیتے ہیں، لیکن بھائی پیشنٹس دیکھنے کے لیے تو آپ نہیں جاتے نا میڈیکل اسکول. ہاں، آپ میڈیکل اسکول پیشنٹس دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، آپ میڈیکل اسکول میڈیسن پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اور اٹس پارٹ آف، یعنی آپ کی پڑھائی میں اسسٹ کرنے کے لیے آپ کو پیشنٹس بھی دکھائے جاتے ہیں ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے نا، جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں، ویسے ویسے آپ تھوڑا سا زیادہ پیشنٹس کو دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہاؤس جاب کے اندر جو ہے وہ آپ اور زیادہ دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. بٹ ایون ڈیورنگ ہاؤس جاب یو آر اسٹل کنسیڈرڈ اے اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے نا، اسٹل آپ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ہاؤس جاب کے اندر بھی. ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ جو ہے وہ سیکھنے کا وقت ہے، یہ سیکھنے کا وقت ہے. اس وجہ سے جو تبلیغ جماعت کی ترتیب ہے، یہ سیکھنے کی ترتیب ہے. ٹھیک ہے، یہ اپنی اصلاح کی ترتیب ہے. تو بھائی جب یہ ترتیب ہے، اصلاح کی ترتیب ہے، تو کیا مدارس کی ترتیب کے اندر اصلاح کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے؟ مشائخ کی ترتیب جو ہوتی ہے اس کے اندر اصلاح کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے؟ تو بھائی اسلام مقصود ہے نا، اپنی اسلام مقصود ہے نا. اب 4 مہینے نکل کر کے اپنی اصلاح کرائیں، 40 دن نکل کر کے اپنی اصلاح کرائیں، یا جو ہے آپ خانقاہ کے کسی بزرگ کے ساتھ اصلاحی تعلق بنا کر کے اپنی اصلاح کرائیں، یا آپ علماء مشائخ کی نظروں میں رہ کر کے مدرسے کے اندر اپنی اصلاح کرائیں. ٹھیک ہے نا، ہر اصلاح کا لیول ڈیفرنٹ ہوتا ہے. مشائخ کے اندر اصلاح جو ہوتی ہے وہ فل فوکس کے ساتھ اصلاح ہوتی ہے، جبکہ مدرسے کے اندر اصلاح جو ہوتی ہے وہ پارشل فوکس کے ساتھ اصلاح ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پر کتابیں پڑھنا فل فوکس ہوتا ہے، کتابوں پڑھنے کا فل فوکس ہوتا ہے. اسی طریقے سے تبلیغی جماعت کے اندر بھی اصلاح جو ہوتی ہے وہ فل فوکس ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے جو ٹولز استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں وہ ظاہری اصلاح کے ٹولز ہوتے ہیں، باطنی اصلاح کے ٹولز اس کے اندر کم ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پر کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں پر کوئی ایک آپ کا پرائیویٹ کیئر فزیشن، پرسنل کیئر فزیشن نہیں ہوتا. تو پرسنل کیئر فزیشین کے بغیر پورا علاج تو نہیں ہو سکتا نا. کمپاؤنڈر صاحب جو ہیں یا جو دوسرے صحت مند لوگ ہیں، ان کی صحبت میں رہ کر کے آپ کی پارشل اصلاح ہو سکتی ہے، لیکن کامل اصلاح تو ڈاکٹر کے سامنے ہی ہوتی ہے نا، ڈاکٹر کے پروسیس کے تھرو ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو تبلیغی جماعت بھی فوکس ہے اصلاح ہی کا، لیکن چونکہ وہاں پر ڈاکٹر والا کانسیپٹ موجود نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہاں پر ظاہری اصلاح ہوتی ہے، باطنی اصلاح نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو تبلیغ جو ہے وہ کوئی تبلیغ جماعت کا فریضہ نہیں ہے، تبلیغ جماعت کا فریضہ نہیں ہے، یہ ہر انسان، ہر مسلمان کا فریضہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. ٹھیک ہے، وہ اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر اس کو کرتا ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت دی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ساری ترتیبیں ہیں یہ اپنی اصلاح کی ترتیبیں ہیں. کچھ لوگ جو لٹھلے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں نا کہ جی آپ نے جماعت میں نکلنا ہے, جماعت میں نکلنا ہے, بھائی میں کیوں نکلوں جماعت میں؟ ٹھیک ہے, جب میں نے اپنے شیخ کے ساتھ اصلاحی تعلق بنایا ہوا ہے اور شیخ کے حکم کے اوپر میں کام کر رہا ہوں, میں شیخ کے حکم کے مطابق کام کروں گا. ٹھیک ہے, تمہارے بات سمجھ میں نہیں آتی تو میں کیا کروں اس بات کا بھائی؟ ٹھیک ہے, ایسے لوگوں کو پھر اگنور کرتے رہنا چاہیے. خالی بات سمجھ میں نہیں آتی, اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے. باقی یہ کہ وہ جو نیکیاں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جس کے اوپر بہترین جزائے خیر عطا فرمائے, ان کے ساتھ اچھا گمان رکھتے ہیں. بہرحال آگے چلیں کہ لیس علیہ تو فرمایا کہ تبلیغ و دعوت اور باہمی تعاون و تناسب بھی داخل ہے, اور ان پیغمبروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اقرار لیا, اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے بھی, اور یہ کوئی معمولی عہد و اقرار نہیں تھا, بلکہ ہم نے ان سب سے خوب پختہ عہد لیا تاکہ قیامت کے روز ان سچے لوگوں سے یعنی انبیاء علیہ السلام سے ان کے سچ کی تحقیقات کرے, تاکہ ان کا شرف و اعزاز اور نہ ماننے والوں پر حجت مکمل ہو جائے. اس عہد اور اس کی تحقیقات سے دو باتوں کا وجوب ثابت ہو گیا کہ صاحب وحی پر اپنی وحی کا اتباع واجب ہے. ٹھیک ہے, شروع میں نبی علیہ السلام کو فرما دیا کہ وَتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ, اور جو عام لوگ صاحب وحی نہیں ہیں ان پر اپنے صاحب وحی پیغمبر کے اتباع کا وجوب واجب ہے. ٹھیک ہے, یعنی وجوب ہے, اور کافروں کے لیے جو صاحب وحی کے اتباع سے منحرف ہیں اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. ٹھیک ہے, تو تین کیٹیگریز بنا دیں, ایک وہ جن کو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ یعنی وحی عطا فرماتے ہیں, ڈائریکٹ انسٹرکشنز دیتے ہیں, دوسری کیٹیگری بنا دی کہ جن کو ڈائریکٹ انسٹرکشنز نہیں ملتی ہیں. تو ان کی ذمہ داری کیا ہے کہ جن کو ڈائریکٹ انسٹرکشنز ملتی ہیں تو ان کی اتباع کی جائے. ٹھیک ہے, اور تیسری کیٹیگری وہ ہو گئی کہ جو کہ انکاری ہیں, اتباع سے انکاری کر دیتے ہیں, تو ان کے لیے جو ہے جہنم کا عذاب ہے. معروف و مسائل میں فرماتے ہیں کہ شروع صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وحی کے اتباع کا حکم دیا گیا ہے, وَتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ, اور گزشتہ آیت النبی اولا بالمؤمنین میں مؤمنین پر صاحب وحی کے احکام کی تعمیل واجب کی گئی ہے. انہی دونوں باتوں کے مزید اثبات و اظہار کے لیے مذکورہ دونوں آیتوں میں بھی دو مضمون بیان ہوئے ہیں, یعنی صاحب وحی کو اپنی وحی کا اتباع اور غیر صاحب وحی کو صاحب وحی کا اتباع کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے, باقی یہ کہ جس دور میں صاحب وحی موجود ہی نہ ہو تو اس دور میں صاحب وحی کی باتوں کو سمجھنے والے جو علماء اور مشائخ ہوتے ہیں تو ان کی اتباع جو ہے اس دور کے عوام الناس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے, اور یہ بات بھی قرآن ہی سے ثابت ہے. اس کی بھی اگر آپ کو تفسیر پڑھنی ہو تو کون سی سورت ہے, سورہ نمل غالباً, جس میں کہ وہ ہے نا کہ فاسأل اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, کیا ہے وہ, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اس آیت کی تفسیر میں مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے کئی صفحات کے اندر اس بات کو مدلل طریقے سے بیان کر دیا ہے کہ واجب ہے یہ عوام الناس کے اوپر علماء اور علماء کی اتباع یا علماء کی اطاعت. باقی میثاق انبیاء آیت مذکورہ میں جو انبیاء علیہ السلام کے انبیاء علیہ السلام سے عہد و اقرار لینے کا ذکر ہے وہ اس اقرار عام کے علاوہ ہے جو ساری مخلوق سے لیا گیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی دو الگ الگ طریقے لیول کے عہد اور اقرار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جب بھی آپ نے شاید سنا ہو کہ جب ہمارے مشائخ بھی حضرت جناب کا تم خصوصاً جب وہ بیعت کے کلمات پڑھاتے ہیں نا تو وہ عوام الناس کے لیے الگ بیعت کے کلمات ہوتے ہیں, اور جب وہ کسی کو اجازت اور خلافت دے رہے ہوتے ہیں تو اس وقت باقاعدہ کہتے ہیں کہ یہ جو کلمات پڑھائے جا رہے ہیں یہ ہر بندہ نہ پڑھے, یہ صرف ان کے لیے پڑھائے جا رہے ہیں, ان سے الگ عہد لیا جا رہا ہے. جن کو خلافت دی جا رہی ہے ان سے الگ عہد لیا جا رہا ہے, عوام الناس سے الگ عہد لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو عوام الناس کے عہد کے اندر تو خلفاء بھی شامل ہو جاتے ہیں, لیکن خلفاء کے ساتھ جو عہد لیا جا رہا ہے ان کے اندر عوام الناس شامل نہیں ہوتے. تو یہ اسی سنت یعنی اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ انبیاء والا جو کام جس کو دیا جاتا ہے تو اس سے الگ عہد لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور ساری مخلوق سے عہد جو لیا گیا وہ الگ عہد لیا گیا, جیسے کہ مشکات میں بروایت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ مرفون آیا ہے کہ خصو کہ یہ خاص کیے گئے, مجھول کا صیغہ ہے, جمع یعنی جمع مذکر غائب فعل ماضی مجھول, خصو خصا یا خصو خصا یخصو. ٹھیک ہے, تو خصو بھی میثاق رسالتی و نبوت. ٹھیک ہے, یہ خاص کیے گئے رسالت اور نبوت کے میثاق کے ساتھ, وَهُوَ قَوْلُ تَعَالَى وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ إِلَى الْآيَةِ. ٹھیک ہے، یہ والی جو آیت تھی یہی اہم میثاق ان سے لیا گیا، یہ عہد انبیاء علیہ السلام سے نبوت و رسالت کے فرائض ادا کرنے اور باہم ایک دوسرے کی تصدیق اور مدد کرنے کا عہد تھا. جیسا کہ ابن جریر و ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے حضرت قتادہ سے روایت کیا ہے، اور ایک روایت میں اس عہد انبیاء میں یہ بھی شامل تھا کہ وہ سب اس کا بھی اعلان کریں کہ محمد رسول اللہ لا نبی بعدہ، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، آپ کے پاس کوئی نبی نہیں ہوگا. تو انبیاء سے ختم نبوت کہہ دیا گیا، انبیاء سے بھی ختم نبوت کہہ دیا گیا اللہ اکبر. اور یہ مثال انبیاء بھی ازل میں اسی وقت لیا گیا جب عام مخلوق سے الستو بربکم کا عہد لیا گیا تھا، اسی وقت ان سے بھی عہد لیا گیا تھا یہ والا. ومن نوح الآیہ، انبیاء علیہ السلام کا عام ذکر کرنے کے بعد ان میں سے پانچ انبیاء کا خصوصی ذکر ان کے اس خاص امتیاز و شرف کی بنا پر کیا گیا جو ان کو زمرہ انبیاء میں حاصل ہے، جن کو اولو العزم انبیاء کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام کا ویسے تو یہاں پر ذکر نہیں ہے، لیکن آدم علیہ السلام بھی اولو العزم میں شامل ہے، اور نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ، عیسیٰ اور نبی علیہ السلام علیہ السلام. ٹھیک ہے، تو یہ اولو العزم انبیاء کہلاتے ہیں. تو ان میں بھی لفظ منکا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اوروں سے مقدم کیا گیا ہے، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سب کے بعد ہے. وجہ اس کی خود حدیث میں یہ بیان فرمائی گئی ہے، کنت اول الناس فی الخلق و آخرهم فی البعث، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تخلیق و تکوین میں سارے انسانوں سے پہلا ہوں اور بعثت و نبوت میں سب سے آخر ہوں. ٹھیک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس انبیاء کے دائرے کا سینٹر ہے. ٹھیک ہے، جب آپ کمپس سے دائرہ کھینچتے ہیں، سرکل بناتے ہیں، تو کمپس کی جو نیڈل ہوتی ہے وہ آپ پہلے مڈل میں رکھتے ہیں نا، اس سرکل کے سینٹر میں پہلے نیڈل رکھتے ہیں، تو وہ جو سینٹر آف دا سرکل ہوتا ہے وہ پہلے ڈرا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، سینٹر آف دا سرکل پہلے آپ ڈیٹرمن کر لیتے ہیں نا، پھر اس کے بعد آپ سرکل ڈرا کرنا شروع کرتے ہیں، اور ڈرا کرنے کے لیے آپ کہیں سے ابتدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایسے ہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام از دا سینٹر آف دا سرکل. ٹھیک ہے، لیکن سینٹر آف دا سرکل جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا شروع میں، کیونکہ اس کے اوپر نیڈل رکھی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو جب آپ ڈرا کرنا شروع کرتے ہیں نا، تو ایسے ہے کہ جیسے آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے یہ سرکل ڈرا کرنا شروع کیا. ٹھیک ہے، ڈرا کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، حتیٰ کہ جب یہ سرکل مکمل ہو گیا نا عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر، تو پھر جو ہے یہ جب کمپاس کو اٹھا لیا گیا، جب اٹھا لیا گیا تو سینٹر آف دا سرکل بھی نظر آنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے نا، ورنہ شروع میں سینٹر آف دا سرکل چھپا ہوا تھا، لیکن سینٹر آف دا سرکل کی ڈٹرمینیشن تو شروع میں ہو گئی تھی نا کہ جی یہاں سے سرکل جو ہے وہ آپ نے بنانا ہے. ٹھیک ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی مثال حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ سب سے پہلے تو ہو گیا تھا، جیسے کہ حدیث مبارکہ نے فرمایا کہ میں بعثت و نبوت میں سب سے آخر تھا، یعنی ظہور میرا سب سے آخر میں ہوا. ٹھیک ہے، لیکن تخلیق و تکوین میں میں سارے انسانوں سے پہلا ہوں، یعنی مجھے پہلے ڈٹرمن کیا گیا، میری تخلیق پہلے کی گئی. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر باقیوں کی تخلیق کی گئی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اور شدید محبت عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اتباع کرنے والوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. کوئی سوال ہو تو میری کلاس میں ضرور سے پوچھے گا.